गिरिवरधारे दामाधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी जन रंजन यमुना तीरवन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
नमः ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी की श्री राधा रमण लाल की जय जय श्री राधे श्याम हरे कृष्ण। तो आज श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव दिवस के अवसर पे मुझे आदेश दिया गया है कि कुछ श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के लीलाएं और उनका महत्व बताने के लिए। तो जैसा गोपाल भट्ट गोस्वामी जी श्रीरंगम दक्षिण भारत देश से है, मैं भी दक्षिण से हूँ तो मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है। जैसे गोस्वामी जी वृंदावन गए ऐसा मैं मुंबई आ गया, तो थोड़ा गलती हो सकता है मेरा हिंदी में, तो कुछ भी बीच में गलत हो गया तो मुझे करेक्ट कर देना। पहले हम गुरु वैष्णव आचार्यों का कृपा लेके फिर स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान थिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखानितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रधायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनीश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च पासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंदे श्री भट्टगोपालं द्विजेन्द्रं वेंकटात्मजं श्रीचैतन्य प्रभुं सेवा नियुक्तं च निजालये। हरे कृष्ण। ये श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का प्रणति मंत्र है, तो मैं एक बार बोलता हूं, मेरे पीछे पीछे आप भी एक बार दोहराइएगा। वंदे श्री गोपा श्री भट्ट गोपालम द्विजेंद्रम वेंकटात्मजम श्री चैतन्य प्रभुं सेवा नियुक्तं च निजालये। ये श्री गोपाल भट्ट जी का प्रणति मंत्र है। हम गोपाल भट्ट जी का जन्म से लेके उनका श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट, उसके बाद वृंदावन जाना, उसके बाद उनके बाकी लीलाएं सब आज श्रवण करेंगे। अगर उनका जन्म का लीला अगर हमें श्रवण करना है तो हम इस वृंदावन से श्रीरंग क्षेत्र में प्रवेश करना है। कितने लोग इधर श्रीरंग क्षेत्र गए हैं? हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, बहुत सारे लोग गए। किन किन को अगर ये भौतिक जगत में ही वैकुंठ का दर्शन अगर आपको करना है तो आपको श्रीरंग जाना पड़ेगा। कावेरी विरजासेयम वैकुंठे रंगमंदिरे सवासुदेवो रंगेशः प्रत्यक्षम परमं पदम। शास्त्र में ऐसे बताया गया है, जो कावेरी जल है उधर श्रीरंग क्षेत्र में, वो साक्षात विरजा रिवर है, और जो रंगनाथ जी का मंदिर है वो साक्षात वैकुंठ है, और जो रंगनाथ जी उधर शयन के हुए मूर्ति में हमें दिखाई दे रहे वो साक्षात भगवान वासुदेव है। तो अगर आप श्रीरंग में जाएंगे, कितना बड़ा विशाल मंदिर है, एक शहर पूरा श्रीरंग क्षेत्र का मंदिर के अंदर बसा हुआ है। सप्त प्राकार मध्य सरसिज मुकुलो भासमाने विमाने कावेरी मध्य देशे फणिपटि शयने भोग पर्यंक भागे निद्रा मुद्राभिरामं कटिनि कटिशिर स्पर्श विन्यस्त हस्तम रम्यादात्री कराभ्याम परचित विभवम रंगराजम भजेहम। ऐसा बोलते बहुत सुंदर, बहुत विशाल मंदिर और बहुत बड़े पेरुमाल, उनको बोलते पेरिय पेरुमाल, और मंदिर को बोलते पेरिय कोयल। बोले तो बहुत बड़ा, और भगवान उधर लेटे हैं बहुत विशाल रूप में। तो ऐसा श्रीरंग क्षेत्र में, श्रीरंग क्षेत्र का जो प्रधान अर्चक थे, हेड पुजारी, उनका नाम था वेंकट भट्ट। तो उनके घर में श्री गोपाल भट्ट जी अवतरित हुए थे। गोपाल भट्ट जी के विषय में बोलते हैं कि शास्त्र में वो साक्षात गुणमंजरी या फिर अनंग मंजरी भी कई जगह पे लिखा है कि वो साक्षात अनंग मंजरी का स्वरूप है। तो गोपाल भट्ट जी बचपन से बहुत विशेष भगवान के प्रति प्रेम रखते थे। जैसा वो प्रधान अर्चक के घर में रहते थे तो बहुत सारे षोडशोपचार पूजा, बहुत सारे भगवान के लिए वो पूजा अर्चना करते रहते हैं। अगर आप दक्षिण भारत में भी देखेंगे, जितना उत्तर भारत में उतना नाम संकीर्तन तो नहीं होता है, पर कुछ वो होता है। आपने सुना होगा ऐसा, अगर आप बालाजी में जाएंगे, गोविंदा हरि गोविंदा, श्रीनिवासा गोविंदा, श्री वेंकटेशा गोविंदा, रघुकुल नंदन गोविंदा, ऐसा सुना है आपने कभी? तो ये संकीर्तन दक्षिण भारत में भी होता है। तो ये कब होता है? जब पूरा अर्चना पूरा हो जाता है तो भगवान को विशेष सेवा होता है। उसमें सामवेदम अवधारया, यजुर्वेदम अवधारया, अथर्ववेदम अवधारया, ऐसा भगवान को सब वेद पुराण इतिहास सब सुनाते हैं। उसके बाद नाम संकीर्तन भी सुनाते हैं। तो वेंकट भट्टी जी देखते थे कि जब गोपाल भट्ट छोटे थे पूरा पूजा में शांत बैठते थे, ऐसा पूरा अर्चना देखते थे, जब नाम संकीर्तन आया तो ताली बजाते थे और नाचते थे। तो इनको लगा ये क्या विचित्र बात है हमारे बेटे में कि नाम संकीर्तन में इतना रुचि है इसको, ऐसा सोचते थे वेंकट भट्ट जी। एक बार जब गोपाल भट्ट छोटे थे तो कावेरी जो जल है उसके पास में जो मिट्टी रहता है उनके साथ एक छोटा सा भगवान का मूर्ति बनाया उन्होंने। तो वो सोच रहे थे कि मेरा पिताजी कैसा सेवा करते थे, पहला आवाहन करते थे तो उन्होंने आवाहन किया, उसके बाद अर्घ्यपाद्य सब समर्पण किया, उसके बाद तुलसी दिया, फिर उसके बाद उन्होंने लगा कि मेरे पिताजी तो अभिषेक भी करते थे तो मैं भी अभिषेक करूंगा। फिर उन्होंने कावेरी का जल लिया और ये मिट्टी का मूर्ति पे ऊपर पानी डाला तो तुरंत पिघल गया। जैसे ही पिघल गया रोने लगे गोपाल भट्टी जी, जोर जोर से लोगों ने कहा अरे मेरा मूर्ति पिघल गया। तो उनके माँ अंदर थी, वो बाहर आई और बेटा क्या हुआ बेटा? तो बोली मेरा मूर्ति पिघल गया है। तो माता जी बोली अगर आप शुद्ध मन से भजन करेंगे, शुद्ध मन से भगवान का सेवा करेंगे, फिर आपकी मूर्ति नहीं पिघलेगी, ऐसा उनका माता ने बोला। तो गोपाल भट्ट जी मन के अंदर सोच रहे थे कि मैं ऐसा भक्ति करूंगा, भगवान का ऐसा भजन करूंगा कि मेरे लिए भगवान खुद प्रकट होना चाहिए, ऐसा वो मन में ठान लिए थे। इसलिए गोपाल भट्ट जी को देखते हैं जब वो वृंदावन गए थे उनके लिए कौन प्रकट हुआ था? राधा रमन लाल। तो ऐसे बचपन से ही विशेष रूप से भक्ति करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि श्री चैतन्य महाप्रभु सोचे थे कि हम दक्षिण भारत देश का यात्रा में जाएंगे। तो ओडिशा में थे, पुरी क्षेत्र में, उधर से दक्षिण आ रहे थे, श्री कूर्मम, सिंहाचलम, पानकाल नरसिंह, अहोबिलम, तिरुपति, कांचीपुरम होके श्रीरंग क्षेत्र में प्रवेश किए। जब रंगनाथ मूर्ति का दर्शन किया भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो एकदम भाव विभोर होके नाच रहे थे और कीर्तन कर रहे थे। जब वेंकट भट्ट जी ने ये कीर्तन देखा उनको कितना अच्छा लगा। जब महाप्रभु को देखा बहुत सारे सन्यासी श्रीरंग आए हैं पर ये सामान्य सन्यासी नहीं है, साक्षात कृष्ण है, ऐसा वेंकट भट्ट जी मन के अंदर सोच रहे थे। और ऐसे देखते हैं रंगनाथ जी को और ऐसे देखते हैं महाप्रभु को तो ऐसा लगता था कि साक्षात रंगनाथ जी नाच रहे, ऐसा वेंकट भट्ट को स्प्रू हुआ मन के अंदर से। तो वेंकट भट्ट प्रभु जब ये भगवान का संकीर्तन हो गया था तो उनके पास गए और विनम्र पूर्वक उनको प्रार्थना किए, हे महाप्रभु आप हमारे घर एक बार पधारिए और हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। तो महाप्रभु ने बोला ठीक है। तो इनके घर गए थे तो जैसे ही घर में आए बहुत सारा बहुत अच्छे से आतिथ्य सत्कार किए थे वेंकट भट्ट जी ने। उनका श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण धोया और वो चरणामृत को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे गोपाल भट्ट जी को दिए थे। तो गोपाल भट्ट जी एक चम्मच लेके, उद्धरणी बोलते हैं उसको, वो चम्मच लेके सबको थोड़ा 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 बांटे और बाहर जाके पूरा चरणामृत तो खुद पी गए थे। बहुत सारा विशेष कृपा मिला उनको। भक्त पद दूली और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशिष्ट, तीनों महाबल। सबसे बल है भक्तों का जो चरण धोया हुआ उसको जो पानी है ना वो बहुत प्रबल है, भक्ति शक्ति देता है। तो ऐसा हुआ फिर महाप्रभु ने उनके घर में रहा, उनका आतिथ्य स्वीकार किया। फिर महाप्रभु ने बोला कि हम आएंगे, आपका आज्ञा स्वीकार करते हैं, हम अभी चलते हैं। तो वेंकट भट्ट जी ने बोला देखिए महाप्रभु जी आप हमारे घर आए, आज का तिथि मालूम है क्या आपको? आषाढ़ शुक्ल एकादशी, शयन एकादशी। तो अभी तो चातुर्मास से चारू होने वाला है, आप तो सन्यासी है, कहां जाएंगे अभी? इधर ही रुक जाइए श्रीरंग में, हमारे घर में ही रुक जाइए आप चातुर्मास के लिए, ऐसा विनम्र पूर्वक प्रार्थना किया वेंकट भट्ट ने। तो महाप्रभु सोचे ठीक है, हम चार महीना आपके घर में ही श्रीरंग क्षेत्र में ही रहेंगे। ऐसा महाप्रभु ने बोला तो कितना खुश हो गए थे वेंकट भट्ट जी, गोपाल भट्ट जी। और वेंकट भट्ट ने गोपाल भट्ट को उनका पर्सनल सर्वेंट, निजी सेवक के रूप में उनको दे दिया था। तो चार महीना गोपाल भट्ट ने साक्षात महाप्रभु का सेवा किया। और एक उदाहरण आता है कि चार महीना भक्त वेदांतों का सेवा करके एक छोटा सा बालक महान साधु बन गया। कौन है? नारद मुनि। वो भी चातुर्मास्य था, ये भी चातुर्मास्य है। गोपाल भट्ट भी छोटे से लड़के हैं और नारद बॉय भी छोटा सा लड़का था, और ये भी भक्ति वेदांत बन गए और ये भी महाभागवत वैष्णव बन गए। तो भगवान का भक्तों का जो सेवा करता है उसका तो भगवान का भक्ति प्राप्त करना अवश्य है। तो ऐसा बहुत अच्छा सेवा किया। जब गोपाल भट्ट जी सेवा करते थे, बीच बीच में महाप्रभु के साथ जो उनका सेवक आए थे उनसे महाप्रभु का लीला सुनते थे। तो जिसको जिसको भी हम सेवा कर रहे, देखो हम सब इधर जो बैठे हैं, हम हमारा जीवन हमने श्रील प्रभुपाद जी का सेवा में दिया है और हमारे गुरु महाराज का सेवा में दिया है। तो उनके प्रति प्रेम और उनके प्रति निष्ठा के लिए हम जो भी सेवा दिया गया है वो हम कर रहे। अगर उनके प्रति हमें प्रेम जगाना का इच्छा है हमको, तो हमको दो चीज करना पड़ेगा। उनका सेवा जो वो दिए है वो तो हम कर रहे हैं, दूसरा चीज है उनसे सुनने का और उनके बारे में सुनना चाहिए। जैसा गोपाल भट्ट जी महाप्रभु का सेवा कर रहे पर महाप्रभु के बारे में भी सुन रहे थे। जब हम एक व्यक्ति के बारे में सुनेंगे बहुत कुछ, किन के साथ सुनेंगे हम, किन से सुनेंगे? जो उनका सेवा किया है, जो उनका सांगत्य प्राप्त किया है उनसे सुनेंगे। तो महाप्रभु का जो सेवक था उनको बहुत सारा सांगत्य प्राप्त हुआ, उनसे गोपाल भट्ट जी विशेष विशेष लीलाएं सुन रहे थे। और गोपाल भट्ट जी को ऐसा लग रहा था कि महाप्रभु जो नदिया में नदिया चंद्र के स्वरूप में थे, इतना घुंघरालू बाल थे उनका सुंदर स्वरूप, बहुत सुंदर से नाचते थे पीतांबर पहन के, वैसा रूप मुझे देखना है। अभी तो मैं ये सन्यासी रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु को देख रहा हूं, ऐसा बहुत विलाप कर रहे थे मन में। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो रात को सो गए थे, ऐसा सोच रहे कि अरे मुझे महाप्रभु का नवदीप चंद्र का रूप का दर्शन करना है, ऐसा सोच के वो सो गए थे। तो उसके जब वो नींद में थे तो उनको एक सुंदर सा स्वप्न आया था, नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में गोपाल भट्ट जी को बुलाते हैं और दोनों उनके पास आते हैं। ऐसा लग रहा था कि दोनों महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों पास आके कुछ सीक्रेट उनके कान में बोलने वाले थे, तब तक उनका नींद भंग हो गया और उठ गए थे। ऐसा कितने लोगों को होता है कि कुछ अच्छा इतना सुंदर स्वप्न आ रहा है और बीच में टूट जाता है, फिर आपको लगता है अरे फिर से नींद आना चाहिए और वो स्वप्न उधर से ही शुरू हो जाना चाहिए, कितना अच्छा लगेगा। तो ऐसा ये सोच रहे थे गोपाल भट्ट जी और उनको ऐसा लगा, मन में प्रेरणा आई कि मैं जाके महाप्रभु को बोलूंगा कि क्या हुआ मेरा नींद में। ऐसा भाग भाग के महाप्रभु के पास गए, तब तक महाप्रभु को जब वो देखा, वो महाप्रभु उनको श्याम सुंदर के रूप में दर्शन दे रहे थे गोपाल भट्ट जी को। तो श्याम सुंदर को देखा और उन्होंने प्रणाम किया, तुरंत श्याम सुंदर नवदीप चंद्र बन गए। नवदीप चंद्र से वृंदावन चंद्र, वृंदावन चंद्र से मायापुर चंद्र, मायापुर चंद्र से श्री चैतन्य महाप्रभु, ऐसा दर्शन दे रहे थे गोपाल भट्ट जी को। तो उनको कितना अच्छा लगा, महाप्रभु इतना कृपा दे रहे मुझे, इतना कृपा दे रहे, बहुत अच्छा लगा उनको वो दर्शन प्राप्त करके। फिर महाप्रभु ने बोला देखो मैं मेरा स्वरूप को अभी तक दुनिया को रिवील नहीं किया, तो आप भी किसी को मत बताना, ऐसा बोलते हैं गोपाल भट्ट जी को। देखिए साधु वैष्णव भगवान इतना कृपालु है, इतना कृपालु है, बहुत सारा कृपा हमें दे देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी हमारे गुरु महाराज और हम सब भक्त वैष्णव जन जिनके साथ हम रह रहे, जिनका सांगत्य हमें प्राप्त हो रहे, वो बहुत कृपालु है, इसलिए बहुत कृपा हमें ऊपर बरसा देते हैं। पर दो चीज हमें हमेशा याद रखना चाहिए, उस कृपा को बचा पाना और उस कृपा को पचा पाना, ये बहुत मुश्किल है। ये कब होगा? जब हमारे मन में दैन्यता होगी, जब हम सरल रहेंगे, तब जो कृपा हमको दिया गया है उसको हम बचा सकते हैं और उसको पचा सकते हैं। कृपा मिलना बहुत इजी है पर उसको बचाना, उसके लिए दैन्यता चाहिए। इसलिए तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदाहरि। अगर हमारे मन में कुछ थोड़ा भी अभिमान आ गया तो फिर वो कृपा का नष्ट हो जाएगा। तो गोपाल भट्ट जी बहुत विनम्र थे, महाप्रभु को बोले यस महाप्रभु हम जो भी आपका आज्ञा है हम उसको पालन करेंगे। चार महीना, एक महीना नहीं, दो महीना नहीं, चार महीना महाप्रभु उनके घर में रुके थे। ऐसा बोलते हैं वेंकट भट्ट जी का घर में हर कोने में महाप्रभु का कुछ ना कुछ लीला था। तो इतना आनंद में थे सब, वेंकट भट्ट जी, गोपाल भट्ट जी, उनके सब परिवार लोग हर दिन सुबह श्रीरंग क्षेत्र में जाते थे, भगवान का दर्शन करते थे, विविध घरों में जाते थे, कावेरी स्नान करने जाते थे, फिर रात को वेंकट भट्ट जी का घर में लौट जाते थे श्री चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसा समय बीतते गया, चार महीना हो गए, तो महाप्रभु ने बोला अभी हम जाके आते हैं। तो गोपाल भट्ट जी ने महाप्रभु का हाथ पकड़ा और बोला महाप्रभु जाइए मत, थोड़ा और चार महीना रह जाओ इधर। तो महाप्रभु ने बोला और क्या चार महीना रहेंगे, चातुर्मास तो हो गया। अच्छा ठीक है, चातुर्मास हो गया तो दो महीना रह जाओ। फिर महाप्रभु बोले नहीं नहीं हमें अभी जाना है, ठीक है थोड़ा दिन तो रह जाओ। ऐसा बहुत प्रार्थना किए थे, फिर महाप्रभु ने बोला ठीक है मैं और थोड़े दिन रहूंगा। फिर और महाप्रभु ने उधर रहा, जब भी चातुर्मास की जितने समय था वेंकट भट्ट जी से बहुत सारा वार्तालाप हुआ महाप्रभु का, और गोपाल भट्ट जी को बहुत सारा वार्तालाप हुआ था महाप्रभु से, बहुत अच्छा था, समय बीत रहा था। फिर महाप्रभु ने एक दिन बोला गोपाल भट्ट जी हम अभी जाके आएंगे, तो आप अच्छे से माता पिता का सेवा करना, आपके माता पिता बहुत अच्छे शुद्ध वैष्णव है, उनका सेवा करो, उनका जब देहांत हो जाएगा तब आप वृंदावन जाओ, वृंदावन में रूप सनातन ऑलरेडी है, उनका सांगत्य लो, अच्छी तरह से शास्त्र का सारांश आप लिखिए, और वृंदावन में जितने भी लुप्त हुए कृष्ण का लीलाओं का स्थली है उसको आप प्रकाश कीजिए, और अच्छे से गोस्वामियों का सांगत्य में आप भक्ति कीजिए। ऐसा महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को उपदेश दिया। बहुत गोपाल भट्ट जी बहुत शोक में थे कि महाप्रभु जा रहे, फिर भी उन्होंने महाप्रभु का वाणी का आश्रय लिया, महाप्रभु का आदेश का आश्रय लिया, और महाप्रभु को बोला ठीक है। फिर महाप्रभु उधर से चले गए। गोपाल भट्ट जी इतने अच्छे से माता पिता का सेवा किए थे, उसके बाद 20 साल गोपाल भट्ट जी उधर ही थे। उसके बाद उन्होंने श्रीरंग क्षेत्र को त्याग के, जब उनका माता पिता का देहांत हो गया था तब वो निकल पड़े वृंदावन। जब वो वृंदावन आ गए थे, इतना वर्णन है कि इतना गोस्वामी लोग और उधर के वैष्णव इतना खुशी में थे कि जब गोपाल भट्ट गोस्वामी आए थे बहुत बड़ा स्वागत महोत्सव किए थे उन्होंने, तो सब लोगों ने उनका स्वागत किया, वृंदावन सब घुमाया। श्री चैतन्य महाप्रभु को एक लेटर लिखे थे कि ऐसा आपका गोपाल भट्ट आ गए थे, जब गोपाल भट्ट गोस्वामी गए थे सब रूप सनातन सब लोग बोल रहे थे कि आपके बारे में महाप्रभु ने इतना बताया कि आप इतना महान व्यक्ति है, बड़ा पंडित है, सब गुण आपके हैं, महान वैष्णव है, सब बोल रहे थे। फिर गोपाल भट्ट जी ने बोला नहीं नहीं मैं सिर्फ आपका कृपा का पात्र हूं, मैं सिर्फ महाप्रभु का जो कृपा है उसके कारण ही मैं इधर आया हूं, मेरे में कुछ भी योग्यता नहीं है। ये होता है वैष्णवता। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं सरलता यही वैष्णवता, ये सबसे प्रधान गुण है वैष्णव के अंदर, सरल रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए। तो फिर ऐसा जब लेटर लिखते थे तो महाप्रभु कितना खुश हो जाते थे कि गोपाल भट्ट ने वृंदावन चले गए, तो जितने भी पूरी में वैष्णव थे उनको भी बहुत महाप्रभु ने बताया गोपाल भट्ट के घर में हम रुके थे, गोपाल भट्ट ऐसे है, गोपाल भट्ट ऐसे है, वेंकट भट्ट जी ऐसे थे, रंगनाथ ऐसे थे, सब कुछ उनको बताया। और भेंट के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका अंगवस्त्र, उनका कोपिन और जिसके ऊपर वो बैठ के भजन करते थे वो फीट भी गोपाल भट्ट जी के लिए भेज दिए थे। तो जब वृंदावन आए थे तो गोपाल भट्ट जी उन तीन जो कोपिन और अंगवस्त्र और महाप्रभु जिस आसन पे बैठ के वो भजन करते थे वो आसन को देख के इतना, महाप्रभु का प्रेम को देख के इतना भाव हो गए थे कि उनको प्रणाम करते थे, उनको हर दिन पूजा करते थे। तो सब गोस्वामी आके गोपाल भट्ट जी को बोला गोपाल भट्ट जी आप अच्छे से पूजा आराधना कर रहे पर आपको महाप्रभु का आदेश है, अभी आप उस आसन में जाके बैठ जाइए और दीक्षा देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि महाप्रभु ने बोला था गोपाल भट्ट को कि आप दीक्षा देना चाहिए। और वो बहुत विनम्र भाव से उन्होंने अच्छे से शास्त्र का लिखना शुरू किया, जो भी वृंदावन में लीला स्थली उनको प्रकाश करना शुरू किया। रूप गोस्वामी ने बोला आप तो श्रीरंग क्षेत्र का पुजारी है तो अभी हमारा भगवान, हमारा वृंदावन का ठाकुर कौन है, वृंदावन के रूप गोस्वामी के ठाकुर जी श्री राधा गोविंद जी, गोविंद जी का भी आप ही पुजारी बन जाइए। ऐसा बोल के गोविंद जी का सेवा भी गोपाल भट्ट गोस्वामी को सौंप दिए थे। तो अच्छे से गोपाल भट्ट गोस्वामी गोविंद जी का भी सेवा कर रहे थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी का स्वप्ने में आए और उनको बोले कि आप एक शालग्राम जी का सेवा करिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बोला ठीक है, नींद में ये सब स्वप्ने में हो रहा है। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी निकलते हैं गंडकी, मुक्तिनाथ के पास नेपाल में जो गंडकी है उधर गए थे। और वो सोच रहे थे कि कौन सा शालग्राम को मैं स्वीकार करूं और सेवा करूं। तो महाप्रभु ने आदेश दिया तो महाप्रभु ही मुझे प्रकाश करेंगे, ऐसा प्रार्थना करके महाप्रभु को संध्या करने के लिए जब गंडकी जो नदी है उसके अंदर प्रवेश करते हैं तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के हाथ में शालग्राम जी आते हैं। तो वो शालग्राम लेके वापस आते हैं और बहुत सुंदर तरीके से वो शालग्राम का सेवा करते हैं। तब तक आप देखिए वृंदावन में जितने भी हमारे गोस्वामी लोग थे उनके पास विग्रह था। सनातन गोस्वामी का किन का विग्रह था? मदन मोहन जी। रूप गोस्वामी के पास राधा गोविंद देव जी। तो ये सब सेवा कर रहे थे बहुत सुंदर तरीके से। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हर दिन उनके शालग्राम जी को लेते थे, अच्छे से षोडशोपचार पूजा करते थे, चंदन लगाते थे, बहुत अच्छा था। तो उधर जितने भी राजा थे वो सब वृंदावन आते थे और अलग अलग गहना वस्त्र मुकुट सब गोस्वामियों को देके जाते थे उनका ठाकुर का श्रृंगार करने के लिए। तो गोपाल भट्ट जी सोचते थे अरे मेरा ठाकुर तो ये शालग्राम रूप है, ऐसा है ऐसा। एक कोई कोई गोपाल भट्ट जी के साथ मजाक करते थे जब गोपाल भट्ट जी उनके शालग्राम को ऐसा झूला झूलाते थे। तो एक वैष्णव आए थे और बोल रहे थे कि पूरा चंदन लगा के पूरा पीला पीला ऐसा था। तो एक आचार्य एक वैष्णव थे उन्होंने बोला ये कैसा लग रहा है, कड़ी में पकौड़ा जैसा लग रहा है आपका ठाकुर, ऐसा बोल रहे थे। तो गोपाल भट्ट जी को लगा अरे मे भी कितना सुंदर होगा, मुझे भी एक विग्रह अगर प्रकट होएंगे तो उनके भी श्रृंगार कर सकता हूं, हाँ ऐसा मन के अंदर सोच रहे थे। वो हर दिन शालग्राम जी को सेवा करते थे और पेड़ के ऊपर बांध के वो चले जाते थे सो के, फिर यमुना में स्नान करके अगले दिन आके वो जो पोटली है उसको निकाल के सेवा करते थे। तो वो नरसिंह चतुर्दशी का दिवस था। अभी देखिए जब भी हम भगवान के बारे में प्रस्तावन करते हैं तो उनका भक्त के बारे में बोलना ही बोलना है। अगर हम किसी भक्त के बारे में बोलना है तो उनके ठाकुर के बारे में तो प्रस्ताव करना ही पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा राधा रमन लाल के बारे में भी सुनेंगे आज। तो गोपाल भट्ट जी ऐसा प्रार्थना किए, फिर यमुना पे गए स्नान करने के लिए। फिर जब सुबह लौट के आए, नरसिंह चतुर्दशी का रात को प्रार्थना किए, जब सुबह लौट के आए थे तो उनका पोटली में कुछ तो हिल रहा था ऐसा। तो वो सोचे क्या, अरे मेरे शालग्राम मूर्ति का पोटली में कोई बिल्ली चला गया क्या। उन्होंने बहुत ऐसा जल्दी जल्दी में वो पोटली खोला, नीचे किया तो कुछ तो हिल रहा था ऐसा उनको दिख रहा था ना। जब वो पोटली खोल के देखे थे उसमें एक सुंदर सा कृष्ण का विग्रह प्रकट हो गया था, राधा रमन लाल की। तो गोपाल भट्ट जी ने सोचा कि ये मेरे लिए भगवान जी का आविर्भाव हुआ है, रूप सनातन गोस्वामी को बुलाए और दिखाए। तो जब सब गोस्वामी विग्रह को देख रहे थे इतना सुंदर इतना सुंदर, मुख एकदम श्री राधा गोविंद जैसा था और उनके जो वक्षस्थल था एग्जैक्टली राधा गोपीनाथ जी से था जैसा था, और उनके श्रीचरण जो थे राधा मदन मोहन जी के जैसा थे। तो उनको इतना खुश हुआ, सब गोस्वामियों ने मिलके उनका नाम दिया राधा रमन। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भी ये राधा रमन को सेवा करने लगे, बहुत अच्छे तरीके से सेवा किए। उनके बाद उनके शिष्यों को ये सेवा सौंपे थे। अभी लगभग 500 साल से वो सेवा अभी तक राधा रमन में चल रहा है, अभी तक जिस तरीके से गोपाल भट्ट गोस्वामी ने स्थापन किया उधर। ऐसा बोलते हैं वृंदावन में सब ठाकुर बाहर गए और वापस आ गए, सिर्फ राधा रमन जी अखंड व्रजवासी है, ऐसा बोलते हैं वृंदावन में कि वो कभी व्रज छोड़ के नहीं गए हैं, वो ओरिजिनल है वृंदावन के, वृंदावन में प्रकट हुए और वृंदावन में ही रहे हमेशा। तो राधा रमन लाल के बारे में बहुत सारा विशेष चर्चा है, आप बहुत बार सुने होंगे कि उनको दांत दिखते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जब हर दिन राधा रमन लाल जी को श्रृंगार करते हैं उनका पुजारी लोग जाते हैं और 10-15 कपड़ा उनके सामने रखते हैं, एक के बाद एक के बाद एक दिखाते हैं। जिस कपड़े को देख के राधा रमन मुस्कुराते हैं उस कपड़ा से उनको ठाकुर जी को उस दिन का श्रृंगार होता है। और 500 साल से उनका जो चूल्हा एक बार ऑन हुआ तो अभी तक बंद नहीं हुआ, वो आग अभी तक ऐसे ही प्रज्वलित है। तो विशेष रूप में राधा रमन लाल जी का सेवा होता है। वो ऐसा नॉर्मल ठाकुर नहीं है, जैसा वृंदावन बिहारी अंदर है तो अंदर ही रहेंगे, पर राधा रमन
राजभोग खाने के लिए बाहर आ जाएंगे, शाम को विहार करने के लिए बाहर आ जाएंगे, फिर उनको रथ पे घुमाएंगे, उनको ट्रेन भी है। एक बार हम देखे थे वृंदावन में, एक छोटा सा ट्रेन था, पटरी लगा के राधा रमन को बिठा के पटरियों पे घुमा रहे थे उधर, ऐसा सेवा करते हैं। राधा रमन लाल को इतना लाड़ लचाते हैं कि उधर जन्माष्टमी और राधा रमन का जो आविर्भाव दिवस है नरसिंह चतुर्दशी का अगले दिन, दो दिन ही राधा रमन जी को अभिषेक करते हैं। क्यों? बोलते हैं कि ये हमारा छोटा सा बच्चा है, इसको बहुत सारा स्नान किया तो ये बेचारा बीमार हो जाएगा। ये दो दिन भी जन्माष्टमी और आविर्भाव दिनस में भी राधा रमन जी को दोपहर में अभिषेक करते हैं, रात को नहीं करते। बोलते हैं रात को करने से इनको सर्दी हो जाएगा, ऐसा बोल के दोपहर में ही, जन्माष्टमी में दोपहर में अभिषेक होता है, आविर्भाव दिवस पे भी दोपहर में भी अभिषेक होता है। ऐसा बहुत सारा लीला है। जब रूप सनातन के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए थे तो महाप्रभु ने बोला कि मैं फिर से वृंदावन आऊंगा। तो आचार्य बताते हैं कि महाप्रभु तो एक ही बार गए, फिर दूसरे बार कैसे गए? तो दूसरे बार वृंदावन महाप्रभु राधारमण के रूप में गए। तो राधारमण ही श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु राधारमण जी, इसलिए राधारमण मंदिर में अगर आप देखेंगे तो जय गौर राधारमण विजयतु ऐसा लिखा रहता है। वही महाप्रभु है, वही राधारमण जी। तो ऐसा बहुत विशेष रूप से राधारमण लाल जी का सेवा अभी भी हम देखते हैं, बहुत सारे गोस्वामी परिवार उधर राधारमण लाल का सेवा करते हैं। तो उसके बाद हम गोपाल भट्ट जी ने बहुत सारे शास्त्र लिखे थे, उसमें एक प्रदम सब लोगों को मालूम है, हरिभक्ति विलास। हरिभक्ति विलास गोपाल भट्ट गोस्वामी का रचना है, फिर सनातन गोस्वामी ने उसको कंपेल किया। उसके बाद जो हम षट संदर्भ देखते हैं वो भी बोलते हैं कि शिला गोपाल भट्ट जी के ही लिखित है और शिला जीव गोस्वामी ने उसको पैराफ्राइज किया है, ऐसा उस आचार्यों ने उल्लेख किया है। शिला बलदेव विद्याभूषण इन स्पेसिफिकली ही हैज सेड दैट षट गोस्वामी षट संदर्भ इज द वर्क बाय शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी। उसके बाद जो हम यज्ञ का पद्धति, पूजा का पद्धति जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आता है उसके बारे में गोपाल भट्ट जी ने रचना किया। उनका उस पुस्तक का नाम क्या है प्रभु जी? सत्क्रिया सार दीपिका, वो भी श्रीला गोपाल भट्ट जी ने किया। उसके बाद क्या हुआ, महाप्रभु का ऐसा आदेश था कि आपको दीक्षा देना चाहिए। तो गोपाल भट्ट जी का तीन बहुत महान शिष्य हुए थे, कौन जानते हैं उन तीनों का नाम? जो गौड़ी वैष्णव सांप्रदाय का प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं, कौन है तीन आचार्य? श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर। ये तीनों गोपाल भट्ट जी के से ही शिक्षा प्राप्त किए हैं, उनसे अनुग्रह किए हैं। गोपाल भट्ट जी ने सब आचार्यों का जो शिक्षा है ये तीन महान व्यक्तियों को दिया है। देखिए आप 500 साल पहले आप जब महाप्रभु चले गए, उसके बाद रूप सनातन चले गए, फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी नेक्स्ट जनरेशन गोस्वामी थे, उसके बाद जो गौड़ीय वैष्णव सांप्रदाय का पूरा प्रचार हुआ। सबसे महत्व हमारे वैष्णव सांप्रदाय में यह है कि प्रचार करना, प्रभुपाद जी ने बोला प्रीचिंग इज द एसेंस। तो प्रचार का बहुत महत्व है, तो इसलिए ये तीन श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु, ये तीन गोपाल भट्ट गोस्वामी से शिक्षा लिए और प्रचार करने के लिए गौड़ी वैष्णव सिद्धांत को निकल पड़े। हम देखते हैं उसके बाद जितने भी प्रचार हुआ भागवत का जो गोस्वामी ने लिखा, अगर हमें आज के दिन भक्ति रसामृत सिंधु ये सब शास्त्र मिल रहा है वो ये तीनों के वजह से है, उन्होंने उसको संभाला और लोगों में बांटा। तो उसके बाद थोड़ा समय ऐसा बीतता गया, शिला सनातन गोस्वामी का गोलोक आगमन हो गया, उसके बाद श्री जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी ये सब एक एक गोस्वामी जा रहे थे, तो गोपाल भट्ट जी को बहुत विरह हुआ, बहुत विरह हुआ। तो वो वृंदावन से थोड़ा दूर जाते थे, जैसा गोवर्धन, राधाकुंड, नंदगांव, महावन, गोकुल, ऐसा जाके वो रहने लगे। उधर के बहुत सारे विशेष विशेष स्थलियों को उन्होंने प्रकाश किया था श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने। उसके बाद बहुत सारा सेपरेशन फील कर रहे थे आचार्यों से और भगवान से। क्योंकि उनके भगवान उनके ठाकुर को उनके शिष्यों के हाथ में सौंप दिया था श्री गोपाल भट्ट जी ने। पर उनको आचार्यों के प्रति बहुत विशेष प्रेम था। देखिए ऐसा बोलते हैं कि वैष्णव के प्रति, वैष्णव सांगत्य के प्रति जो अट्रैक्शन हमें रहना चाहिए, जो वैष्णव सांगत्य का एक लत हमें लग जाना चाहिए। अगर वैष्णव नहीं है तो हमारा जीवन कैसा चलेगा? जैसा हमारा आचार्य, सब आचार्यों का मूड ऐसा ही हम देखते हैं। तो ऐसा श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को ही जब सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी चले गए थे तो बहुत एम्प्टीनेस लग रहा था, वृंदावन पूरा ऐसा सुना सुना लग रहा था उनको। तो ऐसा विशेष प्रेम करते थे आचार्यों के प्रति, ऐसा भाव हमें भी हमारे जीवन में रहना चाहिए, हमारे हृदय में पूरा भर देना चाहिए वैष्णवों के प्रति प्रेम से। तो इस विषय के ऊपर एक छोटा सा दक्षिण भारत देश का कथा बताओ क्या, वृंदावन से दक्षिण भारत देश, ठीक है ना? ठीक है। तो एक बार ऐसा हुआ, आप लोग जानते हैं कि रामानुजाचार्य जब दक्षिण भारत देश में थे श्रीरंग क्षेत्र में, एक बहुत बड़े राजा थे उस देश का, पर वो शैव थे। उनका नाम था कुलोत्तुंग चोला, वो शैव राज था, उनको वैष्णव लोगों को इतना जमता नहीं था। वो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे वैष्णवों के प्रति, कोई भी वैष्णव मंदिर के अंदर नहीं जा सकता, ऐसा उन्होंने बुलंद किया। किधर? श्रीरंगनाथ क्षेत्र में, जिधर से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी आए थे उधर। ऐसा बोल दिया कि कोई भी वैष्णव जो भी उद्व कुंड पहनता है उसको नो एंट्री, ऐसा बोल दिया। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक महान आचार्य कुरेश, उनको मंदिर के अंदर जाना था, वो ऐसे लाइन में खड़े होके आगे आगे जा रहे थे, तो जो कुलोत्तुंग चोल के सोल्जर्स थे उन्होंने कुरेश को रोक दिया। उन्होंने बोला आप वैष्णव हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। तो दो सिपाही थे उधर, दो सिपाही ने रोक दिया और पीछे से दूसरा सिपाही, तीसरा सिपाही देख रहा था, वो भाग भाग के आया और बोले कि ये वैष्णव ये है पर इसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, वो बहुत दान दिया है, मुझे भी मेरे जीवन में भी इसने बहुत दान दिया था, तो इसको छोड़ दो, ऐसा बोल। तो कुरेश बोलते हैं कि जब उन्होंने सुना तो ये दोनों सिपाही ने उनका जो हाथ में पकड़े थे उनको मना करने के लिए वो निकाल दिया और बोले कुरेश आप जाओ अंदर। कुरेश ने क्या किया, यू टर्न मारा और चले गए पीछे। तो ये सिपाही भाग भागते उनको पूछ रहा था, अरे आपको अंदर जाने के लिए बोला था, आप अंदर क्यों नहीं जा रहे? वो बोल रहे थे कि मैं भगवान के सामने खड़ा रहूंगा अगर मुझे रामानुजाचार्य के शिष्य मानेंगे। मैं भगवान के सामने इसलिए नहीं जाना चाहता हूं कि मैं बहुत महान धनवान व्यक्ति हूं या फिर मैंने बहुत दान दिया, मैं बहुत अच्छा स्वभाव का हूं, ये भगवान के आगे जाने का योग्यता प्रदान नहीं करते। एक ही योग्यता भगवान के सामने हम खड़ा होके उनका दर्शन करने की योग्यता देते हैं, वो हमारे आचार्य हमारे गुरु के साथ हमारा जो संबंध है। तो ये बोल के वो पीछे चले गए थे। तो ये जो संबंध है हमारे गुरुवर्ग के साथ, श्रील प्रभुपाद जी के साथ, हमारे आचार्य के साथ, यही एकमात्र योग्यता है भगवान का, अगर हम आज सेवा कर रहे और भगवान के बारे में सुन रहे और भगवान का भक्ति कर रहे। तो इसलिए जब गोपाल भट्ट गोस्वामी ये वैष्णवों का विरह इतना सह नहीं पाए थे तो सब जगह अलग अलग जगह भ्रमण कर रहे थे। फिर एक दिन ऐसा आया था कि वो वृंदावन आए थे और उधर मधुकरी कर रहे थे, उसके साथ राधा रमण मंदिर में भी गए, राधा रमण का महाप्रसाद लिया, ये मधुकरी में जितने भी सामान थे उनके साथ मिलाया और श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने ग्रहण किया और राधा रमण के बारे में सोचते हुए और श्रील सनातन गोस्वामी श्रील रूप गोस्वामी के बारे में सोचते हुए उन्होंने उनका शरीर त्याग दिया था और श्री गोलोक वृंदावन चले गए थे। तो गोलोक वृंदावन में श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी का स्वरूप के बारे में ऐसा मेंशन करते हैं कि अनंग मंजरी है, कई कई जगह वो गुण मंजरी है, ऐसा भी वो विशेष रूप में बताते हैं। इस कोई आचार्य बताते हैं कि जब महाप्रभु श्रीरंग क्षेत्र आए थे, जब गोपाल भट्ट गोस्वामी पहली बार महाप्रभु को देखे थे तो एकदम बहुत प्रेम उत्पन्न हो गया गोपाल भट्ट जी को, क्योंकि अनंग मंजरी राधा रानी के बहन है और महाप्रभु साक्षात राधा रानी है, तो इसलिए उन दोनों के प्रति विशेष प्रेम उत्पन्न हो गया, ऐसा बोलते हैं। और जो गोपाल भट्ट जी को इतना महाप्रभु का प्रेम, इतना महाप्रभु का कृपा मिला, ऐसा और कोई गोस्वामी को इतना सांगत्य महाप्रभु का, 4 महीना एक घर में निजी सेवा ऐसा प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा बोलते हैं। तो बहुत सारे योगदान है हमारे सांप्रदाय में शिला गोपाल भट्ट जी को, पर उनसे सबसे बढ़कर और सबसे फेमस उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है हम सबको जो राधा रमन लाल उन्होंने दिया है। तो उस राधा रमन लाल जी का दर्शन हम जब भी वृंदावन जाते हैं ऐसा बोलते हैं। एक सुंदर सा गाना है, मुझे तो गाना नहीं आता, आप ये विशेष भजन आप सुन सकते हैं, जय प्राण धन राधा रमन गोपाल भट्ट जी के लाडले। कितना सुंदर गाना है, कितना भाव है हमारे आचार्य और उनके ठाकुर के बीच में। तो ऐसा गोपाल भट्ट जी के बारे में प्रस्ताव हमारे शास्त्र से हम देखते हैं। और 15 मिनट्स ठीक है। तो एक एक गुण जो गोपाल भट्ट जी के चरित्र से हम सीख सकते हैं उनके बारे में थोड़ा 4-5 कथा आपको सुनाना चाहता हूं। एक था गोपाल भट्ट जी का धैर्य था, उनका सरलता, उनका विनम्र भावना। तो ये बहुत, जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि ये बहुत मुख्य है वैष्णव के लिए। अगर कोई घमंडी हो जाता है, अगर कोई थोड़ा भी अभिमान आ जाता है, साधना का अभिमान, तो तुरंत भगवान का कृपा चला जाता है। एक बार हम मायापुर में थे तो शिला सचिनंदन स्वामी महाराज भागवतम क्लास दे रहे थे, तो सचिनंदन महाराज उनके कथा में बता रहे थे कि एक बार वो मायापुर में थे और ऐसा सब भक्तों के साथ बात कर रहे थे, तो एक भक्त को ऐसा उन्होंने, उनके धैर्य भाव से वो बोल रहे थे कि मैंने एक भक्त को ऐसा कुछ बोल दिया तो उनका चेहरा थोड़ा मुरझा गया। तो तुरंत मायापुर का जितने भी मुझे आनंद प्राप्त हो रहा था धाम का, वो सब चला गया एक मोमेंट, ऐसा बोल रहे थे सचिनंदन महाराज। फिर बोले कि मैं दिन भर सोचता रहा कि क्यों मुझे धाम में इतना ये जो आध्यात्मिकता का अनुभूति है वो नहीं हो रहा है। फिर रात को वो सोचे थे, फिर हो गए और उनको लगा कि मैं ये भक्त के प्रति अपराध किया होगा इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। तो गए और उस भक्त का हाथ पकड़ा और क्षमा मांगा। तो महाराज बोल रहे थे कि कथा में कि जैसे ही उन्होंने भक्त को क्षमा मांगा, तुरंत उन्होंने देखा कि धाम उनके उनके मन में प्रकट हो गया, ऐसा महाराज जी बोल रहे थे। तो हमें, जब हम वैष्णव सांगत्य में रहते हैं, वैष्णवों के साथ जब हम रहते हैं, तो कभी भी हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी है भगवान और गुरु और वैष्णव के आशीर्वाद से ही हम हैं। तो ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर ये विनम्र भाव, ये सरल हृदय हमारे मन में रहेगा तो वो बहुत कृपा हम प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए हम बोल रहे थे कृपा मिलना बहुत ईजी है, पर कृपा को बचाना और कृपा को पचाना ये बहुत मुश्किल है। और दूसरा बात हम गोपाल भट्ट जी के जीवन में देखते हैं कि विग्रहों का पति, श्री विग्रह के प्रति सेवा कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। दो हमारे ठाकुर जी है राधा वृंदावन बिहारी, इतना सुंदर, इतना सुंदर। आज मैं एक भक्त को बात कर रहा था, वो भक्त हंगेरी से आए हैं। हंगेरी में जो विग्रह है त्रिभुवन सुंदर राधा श्याम सुंदर, उनका इतना फेमस है, पूरा इंटरनेट उनका फोटो से भरा रहता है। किसी ने देखा राधा श्याम सुंदर का दर्शन हंगेरी में? इतना सुंदर श्रृंगार करते हुए, इतना सुंदर विग्रह है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि मुझे राधा श्याम सुंदर का दर्शन कभी लेना चाहिए, ऐसा मैं सोच रहा था। वो भक्त मुझे बोल रहा था सुबह कि पूरा दुनिया में सबसे सुंदर विग्रह राधा वृंदावन बिहारी जी है, ऐसा बोल रहे कि कितना सुंदर भगवान। कल परसों जब मधुमाधव प्रभु ने श्रृंगार किया था भगवान को, मैंने हमारे फैमिली मेंबर्स को और इंटरनेट में दिया था, कितने लोग मैसेज भेज रहे थे कि कहां है, हमें दर्शन करना है भगवान जी का, ऐसा बोल रहे थे। मेरा माता श्री वैष्णव सांप्रदाय से है, जब वो आ गई थी एक बार लास्ट ईयर, जब गौर पूर्णिमा में आई थी, जब वृंदावन बिहारी का दर्शन लिया, उसके बाद हर दिन उसका स्टेटस पे वृंदावन बिहारी जी और राधा रानी जी रहते हैं। बस उनका शिक्षा गुरु मुझे बोल रही थी, क्या कर दिया इसको, एक बार लेके जाके पूरा बदल दिया तुमने, ऐसा बोल रही थी मुझे। ऐसा है हमारे वृंदावन बिहारी जी, उनका सौंदर्य इतना है, उनका कृपा इतना है। देखिए लोग कितना कितना घंटों घंटों लाइन में लगते हो। अभी संतोष कृष्ण प्रभु बोल रहे थे, अभी वो पंडरपुर जाके आए थे, तो हमारे आदिलाबाद के डिवोटीज उधर पंडरपुर में जाए थे, उनको बोल रहे थे कि 8 घंटा लगा चरण दर्शन करने के लिए
पंडरीनाथ का। पर हमारे वृंदावन बिहारी जी घंटों घंटों तक आप इधर कड़ा करके रह सकते हैं, कभी कभी बिचारे को कोई देखने के भी नहीं आता है, कभी कभी सुना सुना था। तो भगवान इतना कृपालु है इधर, इतना दयालु है कि हमें दर्शन दे रहे, हमें सेवा करने का मौका दे रहे, हमें इतना सुंदर उनके दर्शन का प्रदान कर रहे, तो हमें उनका लाभ लेना चाहिए। जब भी हमें कथा सुनने का मौका मिलता है, कभी हमें भागवत सुनने का मौका मिलता है, उसका पूरा लाभ हमें उठाना चाहिए। तो ऐसा विग्रहों का सेवा, विग्रहों का प्रति एक आकर्षण, ये बढ़ाना बहुत महत्व है हमारे जीवन में। तो तीसरा चीज जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के बारे में हम सुनते हैं, जब खुद राधा रमन जी उनके लिए प्रकट हुए थे, पर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी सोच रहे थे कि महाप्रभु ने बोला मेरा सेवा करो, पर मैं राधा रमन का सेवा कर रहा हूं, ये करेक्ट है या नहीं है, ऐसा विचार कर रहे थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। तब महाप्रभु एक बार जब राधा रमन जी का दर्शन कर रहे थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, राधा रमन जी महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, फिर महाप्रभु राधा रमन जी के बारे में प्रकट होते हैं। तो हमारे जीवन में जैसा हमें कुछ अच्छा लगता होगा करने के लिए, पर हमारे आचार्य हमें ये चीज बोला है या नहीं, हमारे गुरुवर का आशीर्वाद है या नहीं हमें इस कार्य करने के लिए, ये भी हमारे जीवन में बहुत सतर्क रूप में सोचना चाहिए। इसलिए साक्षात भगवान प्रकट हो गए पर सोच रहे कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं, क्योंकि महाप्रभु ने मुझे नहीं बोला है। इतना श्रद्धा, इतना विश्वास अगर हमारे गुरु का वाणी में हमें हो जाएगा तो हमारे जीवन सार्थक हो जाए। तो ऐसा वैष्णवों का जीवन में से बहुत सारे चीज सीखने लायक मिलते हैं। तो आज गोपाल भट्ट जी का जो तिरोभाव दिवस हम आज कर रहे हैं, श्रीरंग क्षेत्र में वेलंगुड़ी एक जगह है, उधर से श्रील गोपाल भट्ट जी प्रकट हुए थे। अभी दक्षिण भारत में श्रीरंगम में दो हमारे इस्कॉन के ब्रह्मचारी है, उन्होंने वो जगह को प्रकाशित किया जिधर गोपाल भट्ट गोस्वामी का अवतरण हुआ और उधर गोपाल भट्ट गोस्वामी का स्थापना की है। अगर आप इस बार श्रीरंगम जाते हैं तो वो गांव में जाके आप श्रील गोपाल भट्ट जी का इतना बड़ा मूर्ति को स्थापन किया है, तो आज उनका महाभिषेक भी हुआ था, तो जरूर उधर जाइएगा। बहुत अच्छे भक्त है, बहुत अच्छे से आपको दक्षिण भारत का इडली डोसा प्रसाद खिलाएंगे और गोपाल भट्ट जी का दर्शन करवाएंगे, और उनके इतना सारा कथा मालूम है रंगनाथ जी के बारे में, अगर उनके पास जाएंगे वो बुक कथा बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, ऐसा बहुत विशेष प्रेम करते हैं। तो हरे कृष्णा। तो अभी हम कथा को विराम करते हैं इधर। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की, श्री राधा रमण लाल की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव उपलक्ष्य में प्रभु जी बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया कि हमको कैसा भक्ति करना चाहिए, तो हम उनको तीन बार हरि बोल बोल के कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इसके बाद अभी जीवन लो प्रमोदन गाएंगे, उसके बाद महाआरती हरे कृष्ण और सबके लिए दुआएं प्रसाद।
आपका